दत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया ॐ श्रीगुर्वे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि ॐ मायातु वरिदे देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ॐ श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि ॐ नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः प्रणाम जय गुरुदेव सभी को। दीदी गीत आप में से कोई लेना चाहे तो लीजिएगा, मुझे उसकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रणाम। बाबूजी आप लीजिए, ज्योति दीदी कह रही हूँ नहीं ले पाएंगी तो कृपया आप समरी कर दीजिए।
जय गुरुदेव प्रणाम सभी को। तो हाँ मुझको एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं तो इसमें क्या है एक लिंक जो रहती है आदमी की जो कंटिन्यूटी रहती है वो नहीं हो पाई थी। ठीक है सभी को प्रणाम और गुरु सप्ताह को प्रणाम। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अभी जो कुछ भी चल रहा है मौसम परिवर्तन है तो उसका आनंद ले रहे होंगे। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं महाकाल महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। महाकाल यानी ईश्वर किस तरह से सृष्टि की रचना करता है, कैसे हम लोगों को उसमें से जो मानव है सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है, उसको बुद्धि दी है और हर एक कार्य करने के लिए जो दिया गया है, जैसे कि गीता में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर सम्य मौजूद रहता है और वही सब कार्य कराता है। संस्कार लोगों के अलग अलग होते हैं। जो आज के युग का बताया जा रहा है इसमें कि जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने देखा था कि ऐसी स्थितियां आ रही हैं जो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, टकराने के लिए तत्पर हैं। रिसेंटली अभी देखा जाए तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे से युद्धरत है एक तरह का। अभी एक जो उन लोगों का प्लेन था ईरान का, हाँ, तो उसको क्रैश किया गया है, उसमें से करीब करीब 150-200 आदमी चले चल बसे। तो कुछ ऐसी भी विषिकाएं हैं। फिर पहले हम लोगों पढ़ते थे राजे महाराजे होते थे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करते थे। अब भी लोग भाग है अपने अहम भाव के लिए ये युद्ध की जो है चलता रहता है। तो उसी की विभूषिका बताई गई है कि कैसे है और कहते हैं कि समय समय पर ईश्वर के अवतार हुए हैं। जब ये विभिन्नताएं आती हैं लोग बाग अपने से काम नहीं करते हैं, चाहते हैं कि वो उन्हीं का सत्व हो उन्हीं का राज हो। तो ऐसी अवस्था में अवतार के रूप में मानव के रूप में यहाँ आते हैं, जो मानव की सर्वश्रेष्ठ योनि बताई गई है, महान पुरुष हो चुके हैं जो कि युग परिवर्तन होता है, इसमें कैसे लोगों को रहना कैसे शांति स्थापित करनी है ये सब चीजें करते हैं। तो जो अराजकता है अनुशासनहीनता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो कहते हैं कि महाकाल का डंडा चलता है। लोग आपस में भी बोलते हैं, खासकर हमारे यहाँ शांति कुंज में बहुत चलता है। तो वो है तो भावी विभीषिकाएं और उनका प्रयोजन, ये जो कुछ भी चल रहा है अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पेज 9 है तो इसी को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ले लेता हूं मैं, फिर लिंक दी हुई है तो आप लोग ले लीजिएगा। बीना दीदी पढ़ती हैं, आज आशीषा आई हुई है तो आशीषा ले लेंगी। और शैली तुम तो हर चीज जानती हो, कैसे कह दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करना बेटा तो अच्छा रहेगा। ठीक है इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब चालू है, जस्ट ए मिनट मैं चालू करता हूँ। जो कि मैंने बताया कि जो है सब जगह सर्वत्र शांति हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि जो मनुष्य है उसको बुद्धि दी गई है कि भाई तुम इसको ठीक से करो, यहाँ पे शांति रहनी चाहिए, लोग बाग जो अराजकता फैलाते हैं उनको सजा देनी चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ चलते हैं राजधर्म चलता है और एक अपना अध्यात्म का चलता है, तो अगर कुछ लोग बाग करते हैं दुष्प्रवाह यानी दुष्प्रवृत्तियां जो रहती हैं उनको शासन के लिए अपने जो सुरक्षा गार्ड दी रहती है, सेना दी रहती है, तो यह है कि शांति रहे, पब्लिक को इतनी परेशानी न हो। तो यही है ये जो क्रियाकलाप जो आते आते रहते हैं, इनमें होता रहता है महायुद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध। अभी किसी ने पीछे उसमें पूछा था शायद साधना दीदी ने, शीत युद्ध ऐसा भी होता है, घर परिवार में लोग आपस में ही विवाद करते रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, फिर कभी मिल भी जाते हैं। तो सब चीजें चलती हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर एक के विचार एक ही जैसे हों। तो ये सब विभीषिकाएं हैं, ये कैसे इनको परिवर्तित किया जाए, कैसे जीवन को हर्षोल्लास में दिया जाए, ये सब करने के लिए अवतार होता है। ये पिछले इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, पेज 9। आशा है सब लोगों को लिंक मिल गई होगी, तो मैं ले लेता हूँ। सरकारों के माध्यम से लड़े जाने वाले एक और भयानक महायुद्ध की पूरी पूरी संभावना विद्यमान है। जैसे कि मैंने अभी बताया करेंटली कि विश्व में कैसे चल रहा है, द्वंद चल रहा है, लोग एक दूसरे से बाजी मारने के आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे सिरमौर है, हम ही सब कुछ है। तो यही बताया जा रहा है कि सरकारों के माध्यम से लड़े जाने वाले यानी जिसमें फौज लड़ती है, आजकल आमने सामने युद्ध बहुत कम होते हैं, अपने आत्मसस्त होते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड युग आ गया है। तो यहाँ घर बैठे बैठे ऐसी मिसाइल्स बनाई गई हैं जो कहीं भी जाकर के गिरा दी जाती हैं और वहां पे सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है तो यही है कि सरकारों के माध्यम से लड़े जाने वाले एक और भयानक महायुद्ध की पूरी पूरी संभावना विद्यमान है। इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बड़े रोमांचकारी और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं, यानी आज का युग का देखा जाए तो एक तरह से वैज्ञानिक युद्ध है। वैज्ञानिक रहते हैं, नए नए आयुध जो है, अस्त्र जो है, वही जैसे बताया कंप्यूटर युग आ गया है घर बैठे ही, और सब चीजें वो डिजाइन कर करके एक दूसरे पर युद्ध करते हैं। तो चिरकाल के सतत प्रयत्नों से जिस तथाकथित सभ्यता और समृद्धि का निर्माण किया गया है उसको ऐसी परिस्थितियों में भारी क्षति पहुंचती है। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी एक तरह से वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि जो हमारा शांति प्रिय देश कहिए या समाज कहिए या युग कहिए है, जो युग परिवर्तन की बात करते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी की, कि हमको विकास वाला चाहिए, शांति प्रिय चाहिए, अध्यात्म चाहिए, तो उसमें से जो परिवर्तन हो रहा है तो उसी के लिए कह रहे हैं कि आज के युद्ध थोड़े मनुष्यों को मार काट कर समाप्त नहीं हो जाते, वरन उनके साथ अग्रणी प्रकार की नई उलझने, नई समस्याएं, एक नई विकृतियां उत्पन्न करते हैं। तीसरे महायुद्ध के समय और उसके पश्चात ऐसी अनेक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं जो मनुष्य जात की वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को संभवतः उलट कर रख दें। द्वितीय युद्ध का, फ्रांस का, और उधर हिरोशिमा जो है वहां पर जो एटम बम गिराया गया था, जिस तरह से जाति यानी मानव जाति ही कितने युगों तक उसमें से परिवर्तन हो गया था, विकृति जो थी, मतलब मानव कई तरह के पैदा हो रहे थे जो समाज अच्छी तरह से नहीं था, तो वो विभीषिका कह सकते हैं हम उसको, कोई लंगड़ा है, कोई दिमाग से कमजोर है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कुछ है। तो ये जो वैज्ञानिक युद्ध होते हैं उसमें यही चीज होती है, तो इसी की चिंता परम पूज्य गुरुदेव जी ने किया है। तो जो तीसरा युद्ध हो तो एक तरह के नहीं होगा भाई, विस्फोट होंगे, सब चीजें धरती का तहस नहस हो जाएगी। तो तीसरे महायुद्ध के समय और उसके पश्चात ऐसी अनेक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं जो मनुष्य जाति की वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को संभवता उलट कर रखती है। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए, म्यूट कर लेना अपना भाई, साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन केवल सरकारी और सेनाओं के समय से लड़ी जाने वाली लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, वरन उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यदि हम आज देखें तो अब सेना तो ठीक है ना, लड़ती है एक देश से दूसरे देश में, जाते
लेकिन जो आयुर्वेद
आजकल चल रहे हैं, जो अणु परमाणु चल रहे हैं, इनसे बात हो रही है। तो वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की परिस्थितियां उग्र से उग्रतर होती चली जा रही हैं। हड़तालें, घिराव, धरना, कलमबंद, आंदोलन के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, मनोभूमि का भी विक्षोभ भी है। यानी करंट में देखें, जो हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अपने दिल्ली में चल रहा है, एक विश्वविद्यालय है, वहां के लड़के जो हैं आपस में ही कितने भी इसका कितना कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, क्या है ये सब?
भाई म्यूट कर लो अपना।
तो डिस्टर्ब हो जाता है, कृपया आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि करंट में अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कैसी कैसी स्थितियां हो रही वहां पे, कि लड़के आपस में भी लड़ रहे हैं, और कुछ दूसरे तत्व जो रहते हैं, नेतागिरी जो रहती है, वो अपने को बढ़ाने के लिए लड़कों का उपयोग कर रही है। लड़के एक तरह से नादान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आग में घी का काम करना, तो वो चीजें हैं। तो हड़तालें, घिराव, धरना, कलमबंद आंदोलन के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, मनोभूमि का विक्षोभ भी है। इन आंदोलनों का संचालन वे कर रहे हैं जो करोड़ों देशवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक परिस्थितियों में है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर हम देखें तो आज के युग में क्या है, नेताजी लोग हैं बस पीछे से संचालन करते हैं, लड़के मारे जाते हैं, देश की संपत्ति का नुकसान होता है, जो विकास की धारा है वो अवरुद्ध होती है। भाषा, संप्रदाय, प्रांत और छोटे छोटे कारणों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गृह युद्ध जैसी, शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। यानी गृह युद्ध आप सभी को समझते हो, ये गृह युद्ध ही है। मतलब जो नेता लोग जाएंगे, चीजों को जलाएंगे, तमाम विस्फोट करेंगे, तो नुकसान तो होगा ही। तो ये जो चीज है देखने को अभी करंट में मिल रही है। या तो भारत की आंतरिक स्थिति की बात हुई, वस्तुतः समस्त विश्व में वही वातावरण व्याप्त है। गरम युद्ध की दावानल रुकी तो शीत युद्ध की आग हर जगह सुलगती दिखाई दे रही है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि गरम युद्ध, जिसमें से कि ये विस्फोट वगैरह होता है, और ये छोटे छोटे कारणों को लेके आपस में ही युद्ध भूम करते हैं, आगजनी करते हैं, और शीत युद्ध का कह रहे हैं गुरु जी कि शीत युद्ध भी लोकमानस को भयानक झटके देने के माध्यम है। उनके परेशान हुआ लोकमानस कोई शांति का मार्ग खोजने के लिए विवश होता है। प्रकृति के प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है। अगर प्रकृति का देखा जाए तो इस साल बारिश ही कंटिन्यूस होती रह गई है, यानी फसल अच्छी से हो नहीं पाई है। अभी जो कोई घरों में देखे, करीब करीब सब लोग प्याज खाते हैं, तो कितनी महंगी हो रही है, यानी 100-150 रुपए किलो हो रही। तो ये चीज जो दिया जा रहा है कि प्रकृति के प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है। बाढ़ आई है, कितना नुकसान हुआ, कितने घर बह गए, लोगों मतलब बेघर हो चुके हैं। मनुष्य की प्रकृति एवं वृत्ति इस अंतरिक्ष आकाश को, सूक्ष्म प्रकृति को प्रभावित करती है। तो ये कहाँ से सब चीजें होती हैं, यानी ईश्वर ये प्रकृति का प्रकोप है। सतयुग में सज्जनोचित प्रवृत्तियां जब अपनी प्रतियां आकाश में प्रवाहित करती हैं, तब उसका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन धान्य, परिपुष्ट जलवायु, अनुकूल उपलब्धियां, सुखद परिस्थिति आदि घटनाएं मतलब होती हैं। तो कहते हैं कि कब, जब ये सतयुग था, अच्छे लोग बात थे, अच्छे चरित्र थे, लोगों का सोच विचार सब कुछ अच्छा था, तो समय पर वर्षा होती थी, और समय पर जो जलवायु है, जो परिवर्तन होते रहते थे, जैसे चाहिए कि भाई ठंड के समय में ठंड पड़े, गर्मी में गर्मी रहती थी, वर्षा में वर्षा आए, तो ऐसे में ये सुखद परिस्थिति कहलाती है। तो सब चीजें होती हैं, भरपूर अनाज होगा, लोग बाग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ये चीजें जो है चलती रहती है। आगे का पेज ले रहा हूँ, पेज 10। तो वही है सतयुग के समय में कि कैसे आनंद से लोग आते थे। सतयुग में इस पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्ण परिस्थितियां थी, प्रकृति मानवीय सुख साधना के अनुकूल चलती थी, ऋतुएं अपना ठीक काम करती थी, और धरती आकाश सभी मंगलमय उपलब्धियां उत्पन्न करते थे। मनुष्य की चेतन प्रकृति का सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य एवं घनिष्ठ संबंध है। यानी मनुष्य की चेतना, हमारी चेतना है कौन है, हम कहते हैं ना कि हम भगवान के अंश हैं, यानी भगवान कण कण में है यहाँ पर विराजे हुए हैं। जो चेतन शक्ति है, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो सब में है। तो मनुष्य की चेतन प्रकृति का सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ ये जो हम वैभव देख रहे हैं, जो भौतिक चीजें देख रहे हैं, ये जड़ प्रकृति है, तो इस इन दोनों का सामंजस्य है। तो यही चीज यहाँ समझाई जा रही है कि प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य एवं घनिष्ठ संबंध है। जब सज्जनता का बाहुल्य होगा तो सुख समृद्धि की परिस्थितियां भी उत्पन्न होगी। यानी जब सब कोई ये सोचेगा, एक दूसरे के प्रति ध्यान रखेगा, ईमानदारी से चलेगा, तो स्वाभाविक है कि वहां सुख शांति रहेगी। किंतु यदि दुष्टता, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों का पलड़ा भारी रहा तो वह प्रकृति पर भी उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भीति का दौर बार बार होता रहेगा, इससे मनुष्य विधि त्रास पाते रहेंगे। तो अगर लोगों में सोच विचार, रहन सहन, उठना बैठना, अगर इनमें सब में परिवर्तन हो गया तो क्या होगा, प्रकृति इसी से विचलित होती है और यही कारण बनते हैं अकाल, भूकंप, बाढ़, ये सब चीजें होती हैं, जिससे मनुष्य का क्या स्थिति होती है हम सभी कोई समझते हैं। ये छोटा पैरा मैं लेता हूँ, आगे आप लोग लीजिएगा। लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाश में ऐसा रेडियो विकिरण फैलाते हैं जिससे मंद और तीव्र शारीरिक रोगों एवं आदि व्याधि की अप्रत्याशित रूप से उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिसके कारण जनसाधारण को हर घड़ी असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी कभी तो ये रोग महामारी और सामूहिक विक्षोभ के रूप में व्यापक बनकर फूट पड़ते हैं और भारी विनाश उत्पन्न करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है पिछले साल बिहार में कौन सी चीज खा करके बच्चे मर गए, कितने बच्चे मर गए, अभी देखा जाए राजस्थान का ये हाल है। तो क्या होते हैं ये मनोविकार, मानसिक रोग और जो ये रेडियो विकिरण होते हैं, इनसे बीमारियां कितनी सारी फैलती है वो करीब करीब सभी हम जानते हैं। जय गुरुदेव। पेज नंबर 10 का ये थर्ड पैरा ले लो भाई, अपराधों की अभिवृद्धि।
जय गुरुदेव। मैं लेती हूँ बोलिए।
हाँ दीदी आप देखिए,
पेज चेंज करेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम आप सभी को। अपराधों की अभिवृद्धि भी एक भयानक स्थिति है। उनके बढ़ने से समाज में एक प्रकार से गृह युद्ध नहीं तो व्यक्ति युद्ध की परिस्थिति अवश्य पैदा हो जाती है। सहयोग और सद्भाव के अभाव में न तो व्यक्तियों की उन्नति होती है, न समाज ऊंचे उठते हैं, वरन असहयोग और दुर्भाव की प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। और जहाँ इस प्रकार की दुर्बुद्धि पनपती है तो सारे परिवार को ही ले डूबती है। आइए बता रहे हैं कि अपराधों की जब अपराध बढ़ जाते हैं तो एक भयानक स्थिति को पैदा कर देते हैं। वो मतलब गृह युद्ध तो नहीं कहेंगे लेकिन वो व्यक्ति युद्ध, मतलब आपस में युद्ध चलता रहता है और उससे दुर्बुद्धि बढ़ जाती है और सारे परिवार को वो ले डूबती है, क्योंकि दुर्बुद्धि आ जाएगी तो परिवार भी विनाश की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं से पीड़ा और परेशानी मनुष्य को चौंकती है तो उसे एक सर्वतोमुखी कष्ट प्रक्रिया का व्यथा भरा अनुभव होता है। परिवार में सभी प्रतिकूल बच्चे अवज्ञाकारी, वयोवृद्ध, दुराग्रही होने से घर नरक बन जाता है। शरीर में अंग प्रत्यंगों में छुपे हुए रोग अहर्निश उत्पीड़ित करते हैं। जिनके साथ ऐतनिक एहसान किए थे वे ही मर्मांतक चोट पहुंचाते हैं। बढ़ी हुई तृष्णा और विलासिता के अनुरूप यहाँ बता रहे हैं कि जब मनुष्य को, मतलब जब ये व्यक्ति छुटता है तो बहुत ही पीड़ा और परेशानी होती है और सभी, मतलब जो बच्चे हैं वो अवज्ञाकारी हो जाएंगे, दुराग्रही हो जाएंगे, मतलब घर में एक तरह से नरक का वातावरण बन जाएगा कि कोई किसी की बात को नहीं मान रहा है, सब एक दूसरे की अवहेलना करने में लगे हुए हैं, तो घर में एक नरकीय वातावरण आ जाएगा। आर्थिक साधन नहीं जुटेंगे, मित्रों के रूप में विश्वासघाती भेड़े ही चारों ओर घूमते नजर आते हैं। परिस्थितियां चिंता, भय, शोक, निराशा, शोक, उद्वेग का वातावरण बनाए रहती है तो मनुष्य का शरीर और मन एक प्रकार की आग में जलता रहता है।
हुँ। हाँ लगता है दीदी को पेज नहीं खुल पा रहा है तो,
और उस गलन से इतनी मर्मान्तक पीड़ा होती है कि मनुष्य अध पागलों की तरह जो तो करके अथवा आत्महत्या करके उस व्यथा वेदना बातें देखे जाते हैं। किसी का स्पीकर ऑन है, कृपा करके उसे बंद करेंगे। व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्टता के दावानल में ऐसे जलन में तो तिल तिल करके झुलटना पड़ता है। नरक इसे नहीं कहें तो और किसे कहें। अब गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं कि कहीं किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहता और सब दुराग्रही मतलब वातावरण लेते हैं। कोई किसी का कहना नहीं मानता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, सब अवज्ञा में उतर जाते हैं। तो वहां एक तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक दुष्टता मतलब इतनी बढ़ जाती है कि वो उसमें जो परिवार के सदस्य होते हैं वो तिल तिल कर झुलसते रहते हैं। तो इसे ही कहते हैं गुरुदेव कि इसे नरक नहीं कहें तो और क्या कहेंगे। युद्ध विनाश प्रकृति प्रकोप की बात इससे अलग है, वे ही मनुष्य का सब कुछ उलट पलट कर रख देते हैं। रूस, चीन, युगोस्लेविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अल्बानिया आदि देशों में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसने करोड़ों व्यक्तियों को खून के आंसू बहाने के लिए और एक अप्रत्याशित परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए अनभ्यस्त ढांचे में ढलने के लिए विवश कर दिया। यह परिवर्तन प्रकृति प्रकोपों से भी अधिक निर्मम थे। महाकाल का चक्र चला एवं देखते देखते साम्यवाद से जुड़े अधिनायक के खिलाफ क्रांति की एक लहर चली एवं हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे राष्ट्रों में सभी को स्वतंत्र बोलने रहने का अधिकार मिला। यह संधि वेला की एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ बता रहे हैं कि वैसे जो प्रकृति का प्रकोप होता है, युद्ध होते हैं, विनाश लीलाएं जो घटती हैं, वो भी मनुष्य का सब कुछ उलट पलट करके रख देती हैं। अब इसमें जैसे कई देशों में जो साम्यवादी क्रांतियां हुई हैं उनमें तो मतलब लोगों को खून के आंसू बहाने जैसी स्थितियां उसमें बन गई थी, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ था कि उन्हें स्वतंत्र बोलने और रहने का अधिकार मिल गया था। ये उनकी एक संधि वेला थी परिवर्तन की। क्योंकि मनुष्य जाति अभी भी अनीति का मार्ग न छोड़ने के अपने दुराग्रह पर अड़ी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है कि हमें अगले ही दिन उन्हें महाकाल के वो भयानक विपत्तियों में होकर गुजरना पड़ेगा। संभव है यह दंड विधान हमें दुर्जनता का पथ छोड़कर समानता अपनाने के लिए प्रेरित करे। ऐसा हो सका तो इन भावी विविधताओं को भी मनुष्य नवयुग निर्माण की प्रथम पीड़ा मानकर मंगलमय ही कहा जाएगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि हालांकि जो अभी भी जो समय है उसमें भी कोई नीति का मार्ग नहीं है, मनुष्य जाति में जो अभी भी है नीति का मार्ग नहीं छोड़ने पर ही वो अड़ी हुई है और ये हमें दिख भी रहा है। और इसलिए कहने की जैसे प्रकृति प्रकोप होते हैं, युद्ध होते हैं, विनाश लीलाएं होते हैं या कुछ भी मतलब इस तरह से होता है, तो मतलब प्रकृति अपना फिर से मतलब अपना कोप यहाँ कह रहे पुनः महाकाल अपने कोप को फिर भयानक परिस्थिति से होकर गुजारना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दुराग्रह हो रहे हैं उनकी सफाई तो करनी होगी, तो उसके लिए मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्डिंग को ढहाना है तो बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा, तो ठीक इसी तरह से जो ये भयानक स्थितियां पैदा हो गई हैं उनको हटाने के लिए एक बहुत कोप भयानक जैसी विपत्ति से गुजरना पड़ेगा। और ये दंड क्या होगा मतलब इसलिए दिया जाएगा कि जो ये दुर्जनता जो पनप गई है उसे छोड़कर और समानता अपनाने के लिए ये दंड विधान किया जाएगा महाकाल के द्वारा। और फिर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ और एक नवयुग का निर्माण हो गया तो इसे हम इस तरह से मान लेंगे कि जैसे प्रसव पीड़ा होती है, दुख बहुत होता है, लेकिन बच्चा उत्पन्न होने की खुशी भी होती है, तो इसी तरह से इसको मंगलमय ही कहा जाएगा। कि इन अगर महाकाल के जो कोप होगा उसमें जो विनाश लीला घटेगी उसके बाद में भी अगर कुछ नया हुआ नव निर्माण होगा आया तो उसे मंगल में ही माना जाएगा। जय गुरुदेव, प्रणाम आप सभी को। इससे आगे दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, शायद इसे एक टॉपिक और ले लेते हैं एक बार।
ले लो
नया आप चालू करे।
हाँ महाकाल और उनका रोध, अभी तो 4 बजे हैं भाव जी।
हाँ वही मैंने कहा उस आगे ले लो कोई, आशीषा नहीं पढ़ पाओगी क्या ज्योति दीदी कोई? शैली तुम कहाँ हो बेटा, क्यों नहीं पढ़ रही हो? अनम्यूट करो।
ठीक है बाबूजी, फिर मैं अपना अनम्यूट करूँ या आगे लूँ?
बाबूजी आप बिना दीदी आप प्लीज आज पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ बाबूजी, कल से शुरू करके पढ़ना।
ठीक है
दीदी मैं
पढ़ने देखा मतलब ऐसा मानना
संजय दीदी आप पढ़ पाओगी?
जी हाँ जी,
कौन सा पेज नंबर है?
ये नया
पेज नंबर 12 है,
पेज नंबर 12
का
है ना। पढ़ती हूँ बाबा जी, महाकाल और उनका रौद्र। अगला टॉपिक इसके पहले काल की पहले जो पीड़ा हुई है उसका हम लोगों ने ये किया। अब इसके बाद में उसके बाद जो आनंद का ये है वो भी होता है, वैसा दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया। आगे है महाकाल और उनका रौद्र रूप, तो सृजन के देवता ब्रह्मा, पोषण के अधिष्ठाता विष्णु और सहार के व्यवस्थापक भगवान शंकर हैं। त्रिदेवों की एक पूरक व्यवस्था के अंतर्गत ही इस विश्व ब्रह्मांड का क्रियाकलाप गतिशील हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि सृजन के देवता ब्रह्मा, पोषण के अधिष्ठाता विष्णु भगवान और सहार जो करते हैं और व्यवस्था जो करते हैं शंकर भगवान हैं। तो इन जो तीन देव हैं इनकी उनकी वजह से ये विश्व की व्यवस्था चल रही है और इस विश्व ब्रह्मांड के क्रियाकलाप गतिशील हो रहे हैं। उत्पादन की प्रक्रिया प्राणधारियों तथा पदार्थों सहित चलते रहने से संसार की बढ़ोतरी होती है। जो उत्पन्न हुआ है उसका पोषण अभिवर्धन होते रहने से प्रौढ़ता और परिपक्वता आती है और जो उपजा है बढ़ा है पुष्ट हुआ है वह अंततः जरा जीर्ण होने पर अनुपयोगी बन जाने के कारण कूड़ा करकट मात्र रह जाता है और तब उसकी अंत्येष्टि भी अभिष्ट होती है। विनाश उत्पादन का आधार है। बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका पोषण होता है पहले, अभिवर्धन होता है और फिर उसमें प्रौढ़ता और परिपक्वता आती है। जो भी जो उत्पन्न हुआ है या जो उपजा है वो बढ़ा है पुष्ट हुआ है और फिर अंततः एक समय के बाद में वो जरा जीर्ण हो जाता है और फिर उस अनुपयोगी तो हो जाता है और इसके कारण वह केवल कूड़ा करकट हो जाता है, तब उसकी जो अंत्येष्टि है वो भी जरूरी है। तो विनाश उत्पादन का आधार है। वैसे जैसे हम मानते हैं ना कि नई सुबह कब आएगी, जब बहुत ज्यादा अंधेरा होगा, तो ये जब ये कूड़ा करकट हो जाएगा विनाश होगा उसके बाद ही उत्पादन नया उत्पादन का आधार बनेगा। वही बात को यहाँ पे समझा है। तो पुरानी फसल कटने के बाद ही नई फसल के बोने लगाने का क्रम बनता है। प्राणी की मृत्यु ना हो तो उसे नया जन्म धारण करने का अवसर कैसे मिले? सृष्टि का चक्र उत्पादन अभिवर्धन और अवसान की क्रम व्यवस्था पर घूम रहा है। यहाँ पर वो इसी बात की परिपुष्टि कर रही है कि यदि प्राणी की मृत्यु नहीं होगी, ये आत्मा है ना, एक शरीर धारण करती है और फिर दूसरा ये करती है, तो वैसे ही जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो नया जन्म कैसे धारण कर सकती है? तो जो ये सृष्टि है उसका चक्र कैसा चलता है? पहले उत्पादन होगा, फिर अभिवर्धन होगा और उसके बाद अवसान की क्रम व्यवस्था पर ही इस सृष्टि का चक्र घूम रहा है। तो अवसान न हो तो फिर उत्पादन के लिए नया पदार्थ कहाँ से आए? विधाता ने सृष्टि के आदि में जितना पदार्थ सृजा था उसी की उलट पुलट होती रहती है और उसी की हेरा फेरी से इस संसार में हलचल दिखती रहती है। अस्तु उत्पादन जितना क्रांति में है, क्रांति में होगा उतना ही अवसान भी। अवसान को अभिनव सृजन का शुभारंभ कहा जाए तो यह सर्वथा उचित ही होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर उसी बात की परिपुष्टि हो रही है कि जितनी तीव्रता से उत्पादन होगा, क्रांति होगी, उतनी ही तेजी से अवसान भी होगा। तो अवसान को क्या कहा जाए, पतन को क्या कहा जाए, अभिनव सृजन का शुभारंभ कहा जाए तो यह सर्वथा उचित ही होगा। भगवान शंकर का निवास स्थान शमशान है। वे गले में मुंड माला धारण करते हैं,
मृत्यु के कालपाश महाशत उनके कंठ में यज्ञोपवीत में लिपटे हुए हैं। तीक्ष्ण त्रिशूल उनका शस्त्र है। जब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं तब चारों ओर आग बरसती है। कुपित होकर वे तीसरे नेत्र से जिसे भी देखते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है। कामदेव की मृग मरीचिका को एक बार उनने पलक मारते मारते जलाकर भस्म कर दिया था। उनके वीरभद्र भैरव एवं नंदीगण कितने विकराल हैं, इसकी कल्पना करने मात्र से रोमांच हो उठता है। यहाँ पर अब ये अवसान क्या बता रहे हैं कि भगवान शंकर कहाँ पे रहते हैं, शमशान घाट में रहते हैं ना, उनका निवास स्थान मानते हैं। और उनके गलों में मुंडमाला धारण करती है, अर्थात मुंडमाला मतलब मृत्यु के बाद जो ये है। तो मृत्यु के कालपश महासर्प उनके कंठ में योग्य पवित्र के समान लिपटे हुए, जो त्रिशूल है वो उनका शस्त्र है। और जब वो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो चारों तरफ आग बरसने लग जाती है। हम सभी को मालूम है कि जब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो उनसे कामदेव के समान कामदेव भी भस्म हो गया था, एक क्षण में भस्म हो गया था। उनकी उनके वीरभद्र भैरव एवं नंदीगण कितने विकराल हैं, इसके बारे में कल्पना करने से ही रोमांच छोड़ता है। तो जब प्रलय की आवश्यकता, मैं पेज पलट रही हूँ, जब प्रलय की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है तब वे तांडव नृत्य करने खड़े होते हैं। उनके चरणों की थिरकन जैसे जैसे गतिशील होते चलती है, वैसे ही जराजीर्ण कूड़ा करकट प्रभुत दावानल में जल जलकर अंतरिक्ष में विलय होते चले जाते हैं और पाप पुरुष उनके चरणों में आ गिरता है। शिव तांडव नृत्य के चित्रों में एक उकड़ू उल्टे मुंह पड़ा हुआ भयभीत जीव दिखाई पड़ता है। उसी की पीठ पर नटराज के चरणों की थिरकन गतिशील होती है। यह पाप पुरुष मानव अंतकरण में निवास करने वाले पशु ही हैं। इसी की समय समय पर असुर शब्द से भरती जाती रहती है। तांडव नृत्य का प्रयोजन पाप पुरुष को परास्त करना, उसकी माया मरीचिका को निरस्त करना है। बस मेरे ख्याल से इसको मैं ये करती हूँ कम्प्लीट। तो ये जो शिव का तांडव है कोई। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ बेटा पढ़ो, कुछ लोग रहते हैं
किसी ना समझाया गया कि आप जब आओ तो नहीं हो सकते, लोग ध्यान नहीं देते। हाँ बेटा पढ़ो।
ठीक है। हाँ तो उनका जो अवसान की प्रक्रिया है वो उसका ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जब शंकर भगवान तांडव नृत्य करने खड़े होते हैं तो उनके चरणों की गति, अवसान की प्रक्रिया शुरू हो रही है ना, तो उनके चरणों की थिरकन जैसे जैसे गतिशील होती है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो जराजीर्ण कूड़ा करकट है वह दावानल में जल जल कर अंतरिक्ष में विलय हो जाता है। और जो पाप पुरुष यहाँ पे बताया है कि एक मतलब ये बिंब है, बताया गया है कि एक पाप पुरुष उनके चरणों में हम देखते हैं कि गिरा हुआ है। जब हम शंकर भगवान का ये चित्र देखते हैं तो एक पाप पुरुष जो है वो शिव तांडव कर रहे हैं और उनके चित्रों में एक पाप पुरुष गिरा हुआ है। तो ये पाप पुरुष है कौन? उसी की पीठ पर नटराज के चरणों की थिरकन गतिशील दिखाती थी। तो ये पाप पुरुष, पाप जो पुरुष है वो एक्चुअल मानव अंतःकरण में निवास करने वाला जानवर ही है, पशु ही है। जब ये पूरी तरह से गतिशील हो जाता है तो फिर ये पाप फैलता चला जाता है और फिर तब शंकर भगवान उनकी पीठ पर नृत्य करते हैं। ये प्रतीक है एक प्रकार से। तो इस यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसी की समय समय पर असुर शब्द से भर्त्सना की जाती रही है और तांडव नृत्य का प्रयोजन इस पाप पुरुष को परास्त करना, उसकी माया मरीचिका को निरस्त करना ही है। तो हमने समझा यहाँ पर कि अब जब ये बहुत तेजी से पतन और ये चालू है जो ये है, तो अब शंकर भगवान का तांडव शुरू हो गया है। और तांडव मतलब क्या है कि मनुष्य के जब उसका पशु सामने आ जाता है और वो पूरी तरह से पशुता पर उतर आता है तब शंकर भगवान का मतलब प्रलय का तांडव शुरू होता है। और फिर उसको वो असुर भी बोलते हैं उसी समय में, और फिर वो इस तांडव नृत्य के माध्यम से वो उसको परास्त करते हैं। आगे मैं पढ़ती हूँ एक पेज, एक पैराग्राफ और लेती हूँ कि पाप पुरुष असुरत्व मानवीय अंतःचेतना में अनेक छद्म रूप धारण कर प्रवेश करता रहता है। तो ये जो असुरत्व है, पशुता है, ये उस पाप पुरुष या मानवीय अंतःचरण में अनेक रूप से धारण करता है। हम इसको अलग अलग रूप में देख रहे हैं ना, कहीं पे आंदोलन के रूप में है, कहीं पे हिंसा में है, कहीं पे ये अनिति के रूप में है। तो ये अनेक रूप धारण करके प्रवेश करता है मानव अंतःचेतना में और उसे संकीर्ण स्वार्थपरता के वासना और तृष्णा के जाल जंजाल में फंसाने के लिए विविध प्रलोभन एवं आकर्षण दिखाता रहता है। अविवेकी जीव जो रहते हैं वो इसी प्रलोभन में फंसे चले जाते हैं और अपनी ललक लिप्साओं की पूर्ति के लिए एक से एक अनोखे प्रपंच रचते रहते हैं। तो पाप पुरुष की प्रवंचना से जकड़ा हुआ प्राणी केवल वासना एवं तृष्णा की पूर्ति में ही रस लेता है और जीवनोद्देश्य एवं कर्तव्य धर्म की ओर तो आंख उठा कर देखने की भी उसकी इच्छा नहीं होती है। इच्छा नहीं तो आवश्यकता कहाँ, जब वो देखना ही नहीं चाहता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो केवल इसने वास्तव में तृष्णा में ही डूबा है। तो फिर वो और जब इच्छा ही नहीं है तो फिर वो सोचेगा भी नहीं, है ना, आवश्यकता ही नहीं है कि क्या देखना है, तो फिर उसे सुविधा भी कहाँ है। कामनाओं का इतना बड़ा पर्वत उसके सामने खड़ा होता है जिस पर चढ़ते चढ़ते उसकी सारी शक्ति चूक जाती है और अभाव ही अभाव से चारों ओर दिखते हैं, जो उपलब्ध है वह अति न्यून दिखाई पड़ता है। ऐसी दशा में तुर्त फुर्त बहुत कुछ समेट लेने, बहुत कुछ बरतने, बहुत कुछ भोग लेने के लिए अनिति का मार्ग ही एकमात्र अवलंबन शेष रह जाता है। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वो ऐसा पाप पुरुष है ना, जिसकी सारी ये इच्छा वासना सब ये हो गई है, तो मुंह उठाए खड़ी है, मतलब तो कामनाओं का उसके सामने इतना बड़ा पर्वत खड़ा है कि वो ये कामना पूरी करना है, ये इच्छा पूरी करना है, ये भोगना है मुझे, ऐसा करते करते ही उसकी सारी शक्तियां चूक जाती हैं और फिर वो ऐसे समय में बहुत जल्दी जब उसकी शक्ति चूक रही है तो सबको समेट लेने के लिए वो अनिति की ओर बढ़ता है और अनिति ही करता है और मर्यादाओं के पालन करने में उसे दरिद्रता पल्ले बनती दिखती है। एक मिनट, हाँ, पर पाप पुरुष के जाल जंजाल में जकड़ा हुआ जीव अनिति ही सोचता है, अनिति ही बरतता है और मर्यादाओं का पालन करने में उसे दरिद्रता पल्ले बनती दिखती है। अब अगर वो मर्यादा सोचेगा मर्यादा के बारे में तो उसको लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, तो वो अनिति के बारे में सोचता चला जाता है। संचय रूखा और नीरस लगता है, अतः उसे संचय और उपयोग की दिशा में दौड़ने में ही अतः उसे संचय और उपभोग की दिशा में दौड़ने में ही बुद्धिमानी प्रतीत होती है। इस घूर दौड़ में कर्तव्य और आदर्श पिछड़ जाते हैं और अनिति ही एकमात्र सहचरी बन जाती है। हाँ, तो यहाँ पे खत्म करेंगे क्या पापा जी, 4:15 हो रहा है। यहाँ पे खत्म करेंगे तो क्या पापा जी,
आगे
सवा चार बजे अभी और ले लूँ, ठीक है एक पैराग्राफ और ले लेती हूँ। तो इस दैनीय दुर्दशा में पड़े हुए जीवधारी का उद्बोधन प्रबोधन करते समय समय पर देवदूत ऋषि मनीषी महापुरुष और अवतारी आते रहते हैं। उनके द्वारा समय समय पर सामयिक मरहम पट्टी भी होती रहती है, मरम्मत से कुछ काम चल जाता है। प्रभावशाली धर्मोपदेष्टा अपने समय में एक सामयिक परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। उनके प्रयास कुछ सफल भी होते हैं पर अंततः एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब उस जरा जीर्ण स्थिति को तोड़ फोड़ कर पुनः निर्माण का एक अभिनव सूत्रपात नए सिरे से करना पड़ता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी जब दयनीय दुर्दशा आ गई है ना कि जो मान ये है मनुष्य वो केवल पाप मनुष्य उसका ये शुरू हो गया है और वो उसी में फंसा हुआ अनिति और इसमें, तो जब ऐसी दुर्दशा में पड़ा हुआ है तब ऐसे समय में इस जीवधारी को समझाने के लिए उद्बोधन करने के लिए प्रबोधन उपदेश देने के लिए भी समय समय पर देवदूत और ऋषि मनीषी या महापुरुष या अवतारी सत्ता आती रहती है और उनके द्वारा समय समय पर मरहम पट्टी भी होती है, मतलब वो उनको कुछ कुछ समझाते हैं प्रबोधन देते हैं तो कुछ थोड़ा ठीक भी होते हैं, लेकिन इस छोटी मरम्मत से कुछ काम चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाता है। अंततः क्या होता है कि प्रभावशाली धर्मोपदेशता अपने समय में एक सामयिक परिवर्तन भले उत्पन्न कर दे, उनके प्रयास कुछ सफल भी होते हैं, पर अंततः एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब उस जरा जीर्ण स्थिति को तोड़ फोड़ कर पुनः निर्माण का एक अभिनव सूत्रपात नए सिरे से करना पड़ता है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो मरम्मत होती रहती है, उससे काम चलता भी रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर नए सिरे से सूत्रपात करना पड़ता है, प्रारंभ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाप पुरुष के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति जब उद्बोधनों का भी उस पर कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करता, मनोभूमि कैसी हो जाती है? चिकने घड़े की तरह हो जाती है। चिकने घड़े के ऊपर पानी डालो तो कोई रुकता नहीं है ना। उसी प्रकार जब ये जो पाप पुरुष है उसके ऊपर में कितना भी उद्बोधन प्रबोधन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब क्या होता है कि एक दूसरे को उपदेश देने की विडंबना ही रखते रहते हैं और धर्माडंबर का ढोंग रचने की कला में इतनी प्रवीणता बढ़ जाती है कि सुधारवाद के सारे प्रयत्न उस दम्भ प्रभाव में तिनके की तरह उड़ते चले जाते हैं। और धर्म ध्वजा दिखने वाले व्यक्ति ही जब धर्मद्रोह पर उतारू हो तब समझना चाहिए कि अब सुधार प्रयत्नों का अवसर चला गया, अब मरहम पट्टी की स्थिति भी नहीं रही, इस विषव्रण के लिए अब मेजर ऑपरेशन की भयानक चीरफाड़ की अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। ये बिल्कुल हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे हम लोग जो धर्म गुरु कहलाते थे, अलग अलग मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अभी हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि इतने सारे उन लोगों के अनुयायी बन गए थे, ये सब था, लेकिन क्या हुआ, वो जो धर्म गुरु थे वो खुद ही उन्हीं के ऊपर में केस चल रहा है, वो फंसे हुए हैं और इतने गंदे गंदे आरोप लगे हुए हैं। तो ये वही वाली स्थिति है ना कि ये धर्म ध्वजी दिखने वाले व्यक्ति ही क्या हो गए, धर्मद्रोह पर उतारू हो गए हैं। अब समझना चाहिए कि ये समय आ गया है कि अब सुधार प्रयत्नों का तो अवसर चला गया, अब थोड़ी बहुत जो मरहम पट्टी थी उसकी भी स्थिति नहीं रही, और ये जो विष का घाव लगा हुआ है ना, अब उसके लिए मेजर ऑपरेशन की भयानक चीरफाड़ की अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। ये गुरुदेव हम लोगों को यहाँ पर सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये स्थिति कैसी आ गई है, अब ये इसके ऊपर में आगे विचार करेंगे। बाह्य दृष्टि से आज का संसार प्राचीन काल की अपेक्षा अधिक समृद्ध, अधिक साधन संपन्न और अधिक समर्थ है। हम बाहरी रूप से देखें अगर तो आज संसार में है कि पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गई है ना, अधिक लोगों के पास सुविधाएं आ गई है, अधिक धान्य संपन्न हो गए हैं, साधन संपन्न भी हो गए और समर्थ भी हैं। लगता है कि हम इस प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन यह भौतिक मूल्यांकन सही भी हो सकता है, हो सकता है कि भौतिक मूल्यांकन सही हो, पर आत्मिक क्षेत्र में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। कैसी है कि भावनाओं से उत्कृष्टता और आदर्शवादिता उठती सी चली जा रही है। जहां पर भौतिक रूप से इतना उत्थान हुआ है, वहीं पे मानसिक और नैतिक रूप से पतन भी हुआ है, वो भी हम सब देखते चले आ रहे हैं। तो भावनाओं में से उत्कृष्टता और आदर्शवादिता उठती सी चली जा रही है। आदर्श चरित्र के व्यक्ति जिनका भीतरी और बाह्य स्वरूप एक हो ढूंढे नहीं मिलते, परस्पर आत्मीयता, सहयोग, सेवा और उदारता की रीति नीति बरतने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। आंतरिक दरिद्रता इतनी व्यापक हो चली है कि किसी भी भयानक दुर्भिक्ष से उसकी विभीषिका लाखों गुनी अधिक है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि उन भावनात्मक रूप से आदमी बहुत कमजोर हो गया, बहुत पिछड़ गया है, उसका अपने पर में कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। तो आज आदर्श व्यक्ति जिनका चरित्र अंदर और बाहर से एक हो ऐसा तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है, अर्थात बहुत कम लोग रह गए हैं। परस्पर आत्मीयता, सहयोग और उदारता की जो रीति नीति बरतते थे लोग, ऐसे लोग अब दिखाई नहीं पड़ते। तो ये आंतरिक दरिद्रता इतनी अधिक व्याप्त हो गई है कि अगर भयानक दुर्भिक्ष हो तो वो भी उससे भयानक अकाल पड़ा हो तो उससे भी ये ज्यादा दुर्भिक्ष, ज्यादा लाखों गुना अधिक है। ये क्या मतलब, मानवीय मानसिक रूप से अकाल पड़ा है ऐसे आदर्शवादिता का। तो यही मानव जाति का संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस कमी के कारण साधन सामग्री की दृष्टि से यह समुन्नत समय आज नरक की आग में जल रहा है, जबकि इतनी साधन संपन्नता मिलने पर भी सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण परिलक्षित होना चाहिए। जब इतनी ज्यादा भौतिक संपन्नता हो गई, लोग संपन्न हो गए हैं, सभी सुविधाओं से ये हो गए, तब तो उन लोगों को शांति मिलना चाहिए ना। लेकिन हो क्या रह रहा है, इसका उल्टा, बल्कि और जो लोग हैं वो नरकी वातावरण भोग रहे हैं। हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी है। इतनी ज्यादा चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन फिर भी नई नई बीमारियां हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह कैसा होता चला जा रहा है, ये भौतिक संपन्नता किस प्रकार दुखदायी होती जा रही है।
हाँ बेटा संध्या,
के मतलब परम पूज्य ने जो वर्णन किया है पहले के समय का और आपके समय का, क्या स्थिति रहती है,
वही दिया गया है कि ये जो संसार है तो किस तरह से है। बहुत पहले उन्हें बताया, जो अगर हम देखें तो आदिम जाति के युग में देखा जाए कि कबीले होते थे, आपस में लड़ते थे, फिर इसके बाद जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया, सतयुग वगैरह में देखे सब लोग कितने अच्छे से रहते थे, प्रेम से रहते थे, भाईचारा अच्छा था, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। परिवर्तन आया, राजे महाराजे आए, और ऐसे में लोगों की क्या महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। उन्हें कहा कि हमारी जो सीमा है, यानी देश काल की सीमा, उसको बढ़ाने के लिए लोग युद्ध करने लगे, अब आपस में ही लोग लड़ने झगड़ने लगे। और भी इसके बाद जो स्थितियां आई कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, तो पहले ठीक है, आज तो सच से लड़ते थे, तो उसी में बस इतना ही होता था कि जो सामने से युद्ध करते हैं वही लोग मारे जाते हैं। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, वैज्ञानिक युग आया, विविधता आई, लोग परमाणु युग आया, तो इसमें जब है एटम बम छोड़े गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध का हम लोग देख चुके हैं कि कैसे वहां पर लोग हुए हैं, मतलब स्थितियां बहुत ही विकराल हुई है, सही मानो उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी यह स्थिति हो गई है। बाकी लोगों को लोग मारे गए, और इसके अलावा कोई चीज ही अच्छे से नहीं रह सकी। तो जो विभीषिकाएं हैं, तो गुरुजी ने देखा भी है और वही चीज आगे की बता रहे हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि कंप्यूटर युग आ गया है, और न्यूक्लियर कहते हैं कि ये जो युद्ध की विभीषिका चल रही है, अभी भी कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है, अमेरिका और ईरान का चल रहा है आपस में ही, कैसे एक दूसरे पर मिसाइल्स दागते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई आदमी तो क्या है, पूरी के पूरी जाति ही नष्ट हो जाती है, पूरा शहर नष्ट हो जाता है, अब वो चीज आ गई है। तो इसी का इसमें से परम पूज्य गुरु जी ने पूरा वर्णन किया। फिर कहते हैं कि जो समय परिवर्तन हुआ, आज जो हम अभी बाद बाद में पढ़े हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो बहुत पहले से हम लोग इसको सुन रहे हैं कि ये त्रिदेव होते हैं, एक उत्पत्ति का कारण बनता है, फिर एक उसका पालन करता है, और फिर संहार करता है। और इसी में ये दिया गया है कि जैसे जैसे भाई उन्नति होती चली जाएगी, विकास होता चला जाएगा, तो नई सृष्टि के लिए क्या चाहिए, तो फिर यही आता है परिवर्तन, विनाश। तो ये सृष्टि जो चक्र है चलता रहता है, यानी जन्म हुआ, फिर उसका पोषण हुआ, पोषण कौन करता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ यानी युवा, फिर वृद्धावस्था आई, अब वृद्धावस्था जब आई तो जीर्ण शीर्ण मान हो जाता है, इसके बाद उसको खत्म होना है और उसकी जगह नहीं लेना है। यानी बुद्धि ने यहाँ इस चीज को बहुत ही सुंदर समझाया है कि विकास की गति बढ़ती रहती है, तो जो चरण पे पहुंचता है तो वो उसका एक खत्म होना जरूरी है भाई, नए के लिए बगीचा लगाना है तो पुराना जब खत्म होगा तो हम दूसरा लगाएंगे, दूसरा बीज लगाएंगे। खेती बाड़ी भी यही होती, फसल पकती है, फिर नई फसल के लिए हमको खेत को समतल करना पड़ता है, काटना पीटना होता है, कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी की चलता रहता है। और आज जो कुछ पढ़ा वो यही है कि अगर करंट भी देखा जाए तो लोग बात की कामनाएं इतनी बढ़ गई है कि एक से एक के लिए वो अपने घर द्वार छोड़ रहे हैं, परिवार में जो स्नेह प्यार रहता था वो छोड़ रहे हैं। मैं स्वयं यहाँ देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे रहता हूँ बेंगलोर में, तो देखता हूँ कि लोग बाग अच्छी खासी है, उनकी कार यानी जो एक संपन्नता की निशानी है कि भाई पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी चाकरी है, अच्छा घर है रहने का है, आने जाने की सुविधा के लिए कारें हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इसके आगे और है। तो वो क्या करते हैं, इस देश से दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ और पैसा उनको मिलता है। तो यहाँ जो वृद्ध लोग उनके जो परिवार के लोग रह जाते हैं वो ऐसे पड़े रह जाते हैं, मरते खपते हैं, उनको कोई देखने वाला भी नहीं रहता। ये विभीषिकाएं है, ये लालच है। तो यही गुरु जी इसमें बता रहे हैं कि मानवीयता खत्म होती जा रही है, लोगों की भोग विलासिता बढ़ती चली जा रही है। तो जो पहले राजधर्म और अध्यात्म चलता था, जो धर्म है, धर्म में भी अब आजकल अवनति हो रही है। लोग बाग उसमें देखे कि बढ़िया एसी में चलते हैं, अच्छी अच्छी कारें रखते हैं। जो धार्मिक गुरु होते थे उनमें भी अब लालच और भोग विलास कामनाएं होनी होती चली गई, यानी धर्म का पतन होता जा रहा है। तो ऐसे में महाकाल का फिर चक्र चलने का है। तो आज जो कुछ पढ़ा वो यही परम पूज्य उदय जी ने इसमें कहा है। तो हम क्वेश्चन आंसर मोड कर देते हैं, आप लोग करिए जिसको यानी कुछ बोलना हो, कुछ ऐड करना हो या कुछ समझना हो तो आगे आए। हाँ थोड़ा जल्दी करिए, क्वेश्चन टच करिए, आपके इसमें से क्वेश्चन आया होगा उसको टच करिए, अपने विचार दीजिए। क्या बात है, कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता? रंजन दीदी,
हाँ पिताजी,
हाँ किसी ने क्वेश्चन टच नहीं किया, क्या बात है, सबको मालूम है भाई, कोई भी नहीं बोलेगा। पल्लवी है और शीला दीदी है, शैली भाई अपने विचार रखो बेटा, क्वेश्चन टच करो। चलो ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है,
प्रणाम सभी को, प्रणाम पापा जी। मैं अभी जब भी जो है इनकी बहुत लेट हो गया, मैं फिर भी खोली, आज जो भी स्वाध्याय हुआ मैं सुन नहीं सकी और इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मैं ये प्रश्न मेरा था कि मकर संक्रांति में जो दो दिन का जो हमारा चल रहा है कि आज कल उसका मनाया जाए पर्व, मकर का प्रवेश कर रहा है, कृपया इसका समाधान करें पापा जी, या फिर जिनको मालूम है कि मकर संक्रांति
का सब कोई अपन जानते हैं कि हमारा देश है एक कल्पित रेखाओं में बटा हुआ है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीन रेखाएं हैं। इनमें सूर्य कब पहुंचता है उसी तरह से हमारे देश में सर्दी गर्मी होती है। अब होता क्या है कि एग्जैक्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रहते हैं, जनरली क्या होता है कि सूर्य जो है मकर रेखा पर आता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति यानी उसमें संक्रमण होता है पहुंचना। तो मकर रेखा पर जिस दिन सूर्य आता है 14 जनवरी को हमेशा आता है, बहुत पहले 13 को आता था और पहले युग में 12 को, यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होने की वजह से ये डेट में कई यानी 500 साल लग उतना मालूम नहीं पड़ता। तो एक पीढ़ी यही समझती है कि भाई अभी तो हम लोग जो समझ रहे थे यानी दो तीन पीढ़ी अगर कहा जाए तो 14 जनवरी को, अब जो है वो 15 जनवरी में आ गया है। तो ये पीरियड है इसलिए उसको 14 और 15 दिन, आजकल आप 15 जनवरी करके मनाने लगे हैं। तो सूर्य जो आता है मकर रेखा पे आ जाता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और इसमें तिल गुड़ वगैरह खाया जाता है, हमारी जो ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि सूर्य की वजह से ही ऋतु है, यही इनका कारण था। हाँ चलो कुछ बोलना है, समझ में आया तुम
जी पापा जी, मतलब 15 तारीख को ही सब उसके मनाया जा रहा है आपसे?
हाँ तो कहीं 14 को मनाते कहीं 15 को, अभी एकदम लोगों को नहीं रहता है, मोस्टली अब 15 जनवरी हो गया है।
ओके धन्यवाद आपको, प्रणाम।
जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। हाँ बाबू जी, आज के स्वाध्याय में जो मुख्य बात रही वो यही रही कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जैसे कितनी आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है और सारी चीजें जो है ना समझ नहीं आ रहा है इंसान को कि क्या हो रहा है। मतलब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो उसका कारण परम पूज्य गुरुदेव ने यही बताया कि जो ये पाप पुरुष के रूप में वासना तृष्णा अहंता मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है उसी के कारण जो हम वातावरण में विकीर्ण कर रहे हैं अपने दूषित विचार या दूषित आचरण से, जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है, वो दूषित वातावरण की वजह से सारी की सारी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं। मनुष्य का व्यवहार बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है, उसका चरित्र बदल रहा है, और साथ में प्रकृति में जितने असंतुलन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज यही है कि हमको विवेक से इन सब का निराकरण करना होगा। तो ये आज के स्वाध्याय में मुख्य बात है कि हम अपना विवेक का प्रयोग करें, जब कोई हम सचेत रहें कि कोई अगर अशिव कोई विचार हमारे अंदर आ रहा है, कोई संकल्प ऐसा अशिव है जो कल्याणकारी नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में या फिर ओवर द टाइम जो है वो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाने वाला है, तो हम सचेत रहें अपने विचारों के प्रति, आचरण के प्रति। हम अपने आप को तो कर ही सकते हैं नियंत्रित, और किसी को करे ना करे, तो अगर हम हर कोई अपने अपने को नियंत्रित कर ले तो हम अपने लेवल पर तो थोड़ा बहुत जो है पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज मुझे आज समझ में आया। जय गुरुदेव। हाँ। प्रणाम बाबूजी।
हाँ चलिए, बिल्कुल सही कहा तुमने। और इस तरह से हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, चिंतन मनन, इस पर सब ध्यान दिया जाए तो हमारा समाज जो पतन की ओर जा रहा है वो अब उन्नति की ओर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि ठीक है, अगर मानव सोच लेता है तो ज्यादा अच्छा है, कहीं नहीं तो फिर वो महाकाल का दंड चलता ही है। वो जो सही कहा गया है कि फिर प्राकृतिक विविधताएं आती हैं, फिर ये जो है अग्नि पानी का समय से बारिश नहीं होना, बाढ़ आना, फिर ये सब होता है। तो हमको संभालना है, हमारे को अपना जो आचरण है इसे शुद्धता लानी है। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा। चलो गायत्री मंत्र से वो ले लो, मंत्र के लिए लोग टच करें।
हाँ बाबूजी, मैं गायत्री महामंत्र से सभी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए, वातावरण के परिष्कार के लिए प्रार्थना करते हुए आहुतियां प्रदान करती हूँ। और फिर सभी अपने अपने नाम भी दे दें जिनके जन्मदिन है, विवाह दिवस है, या किसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है, तो आगे महामृत्युंजय मंत्र के लिए तैयार रहिएगा। चल आइए आइए प्रार्थना करते हैं, आहुतियां प्रदान करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति।
जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मैं महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां ले रही हूँ। जिनका भी आज जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं गुरुदेव से कामना करती हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय से बीते। इसी के साथ मैं महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां लेती हूँ। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। क्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।
दीपा दीदी, शांति पाठ।
जय गुरुदेव, आलू शांति पाठ। आलू शांति पाठ फॉर वर्ल्ड पीस। ओम जो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापह शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट तु शांतिर भवतु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।
जय गुरुदेव, प्रणाम। जिन देवताओं का हमने आह्वान किया था वो सभी हमारे बीच उपस्थित हुई और हमें अपने अनुग्रह वरदान से अनुग्रहित किया। उन सभी देव शक्तियों को भावपूर्ण बधाई ये आह्वान करते हुए कि जब भी हमारे चाहते हो हम उन्हें आह्वान करें वो यही हमारे बीच उपस्थित हों और अपने अनुग्रह से हमें अनुग्रहित करें। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम की इष्ट काम समर्थकम पुनरागम न प्रभु पुनरागम न। जय गुरुदेव, प्रणाम।
जय गुरुदेव।
वेरी सॉरी, मैंने यहाँ म्यूट नहीं किया और बोलता चला गया। तो हमने कहा आज का स्वाध्याय समाप्त हुआ और ये अच्छी तरह से परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। सभी को बधाई। और हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं बिल्कुल करंट में देखा जाए कि हमको कैसे आचरण करना है, कैसी चीजें हो रही हैं जो है अभी देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आज की समस्या है जो परम पूज्य गुरुदेव जी देख रहे हैं और लिख रहे हैं, या उस समय उनने भविष्य की कल्पना करी होगी और देखा होगा, तो वही चीज